पाया हुआ परम पद तुम्हारे हाथ से जा रहा है। जो समय बीत गया हो तो बीत गया, और जो बाकी का समय उसकी ऐसो रक्षा करनी चाहिए। हम हमारे अमूल्य जीवन को किसी की लाज में आकर के अपने जीवन को नष्ट क्यों करें, किसी के भय से अपने जीवन को नष्ट क्यों करें, या किसी लोभ से या काम के वशीभूत होकर के अपने जीवन को नष्ट क्यों करें। ये मनुष्य का जीवन तो बार बार मिलने का नहीं, समझो कि बहुत योनियों को भोगते भोगते जब ये तंग आ जाता है तो भगवान कभी दया करके के और इसको मनुष्य का शरीर दे देते। ऐसे मनुष्य के शरीर को पा करके और एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए कि मरने के समय के बीच के वहां एक क्षण की भी कमी रह जाएगी, एक मिनट की भी कमी रह जाएगी तो फिर हमारे को जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि योग वृष्टि की जो गति है वही गति हमारी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रख करके कटिबद्ध होकर के कमर कस कर करके और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राण प्रज्वलन चेष्टा करनी चाहिए। फिर भगवान नहीं मिले ऐसी बात नहीं, जो भगवान से मिलना चाहता है भगवान भी उससे मिलना चाहते हैं, किंतु अपने में जो भक्ति है, अपने में जो ज्ञान है, उत्तम जो गुण है, इनको एक प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए, इनका प्रकाश नहीं करना चाहिए। संसार के बीच में जो अपने उच्च कोटि का जो साधन है, अपना जो ध्येय है, उसकी जो ढूंढी पिटवाता है कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, वो तो मूर्ख है। पूछने पर भी इसका उत्तर ऐसा नहीं देना चाहिए कि अपनी कैसी स्थिति है, अपने तो काम करते ही चले जाना चाहिए। प्रश्न उत्तर करें पूछ रहे मैं भी तो समय लगेगा ना, इतना समय हम लावें कहां से। यदि थोड़ा समय बाकी रह गया तो हमारे को फिर जन्म लेना पड़ेगा। जो आदमी यहां से कलकत्ता जाना चाहता है और उसके पास में आठ आना का पैसा कम है तो बाबू को टिकट करने को कहेगा, साहब टिकट हमारे को कलकत्ते की दे दीजिए, पैसा तो आठ आना का कम है। अरे बोले चल यहां से, टिकट नहीं मिलेगी आपको। तो बोले यह है कि भाई आठ आना का पैसा कम है ना, तो दो चार स्टेशन उड़े की तुम टिकट ले लो, फिर वहां से आगे चले जाना, तो हमारे को कलकत्ते की टिकट नहीं मिलती। इसी प्रकार से थी हमारे में कमी रह जाएगी तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो परम धाम की टिकट है वो हमारे को नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले से थी अपना प्रबंध करना चाहिए, इस बात की कमी अपने में नहीं रहनी चाहिए। कमी हो तो अपने कलंक है, क्यों हमारे में कमी रहनी चाहिए, इससे भी क्या काम है। एक दिन ये शरीर जब मर जाएगा तो इसको शमशान में ले जाकर के लोग जला देंगे और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगी, ये दशा होगी। तो इसलिए जब तक मृत्यु दूर है और जब तक शरीर आरोग्य है और जब तक वृद्धावस्था भी दूर है, उसके पहले पहले अपना काम बढ़ा लेना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ बढ़ने का नहीं है। तो ये सिद्धांत बोल रहा है कि शीघ्र अति शीघ्र जो है स्व परमात्मा की प्राप्ति अपन कर लेनी चाहिए। अपने क्यों रुके, थोड़ा ध्यान दो कि यदि रुपयों के लिए रुके रुपयों में क्या करें। आज जब मर गए तो रुपयों की फेरिए हमारे साथ तो नहीं जाएगी ना। हमारे पास यदि लाख रुपया हो तो हमारे साथ के बीच में क्या पांच सात हजार भी जाएंगे, कुछ नहीं, मर गया वो गए। तो ये सब बात ध्यान में ला करके और कटिबद्ध होकर के जिस काम के लिए हम आए उसको सिद्ध कर सकते, यही आपने समझदारी है, नहीं तो मूर्ख है वो। तो ये बात एकदम स्पष्ट बात। दूसरी बात यह है कि जैसे रुपये हैं ऐसे अपने और ईश्वर जो है, मकान है, स्त्री है, पुत्र है और ये सब चीज है, तो इनका भी हमारा इतना ही संबंध है। यहां से विदा होने के बाद में कभी इनके दर्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि जिन नेत्रों से दर्शन होते थे वे नेत्र को समझो कि शमशान भूमि में जाकर के जलाए गए, अब दर्शन किससे हुए, फिर इसके कभी दर्शन भी ऐसे नहीं होंगे। पर भाई बंधु कुटुंब कबीला या जो कुछ धन ऐश्वर्य है इस शरीर से समझ लगते हैं, आत्मा से नहीं। शरीर जब नाश हो गया तो उनके साथ ही समझ उसका समझ विच्छेद हो गया। अरे ये होगा निश्चय, संयोग जो है उसका अवश्य भाई वियोग है। आप लोगों के साथ में मेरा मिलन हुआ, संयोग हुआ, तो इससे बाद में वियोग है। भगवान के साथ में संयोग होता है फिर वियोग नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रकार से ईश्वर का अंश जो जीवात्मा है वो परमात्मा के साथ में मिलकर एक हो जाता है। फिर सुख दुख किसको हो, और वहां पाप पुण्य पहले ही भस्म हो जाते हैं। जो जन्म के देने वाले पाप पुण्य है, और पाप पुण्य के साथ साथ के वहां समझो कि आसक्ति भरी हुई है राग, उस राग के कारण से दूसरों से द्वेष भी कर ले और क्रोध भी कर ले सारे अवगुण घट जाते हैं। तो सारे अवगुण के नाश के लिए जो कुछ अनिच्छा से परिच्छा से हो रहा है ये सब भगवान का विधान है। और देख देख करके खुश होना चाहिए, देख देख करके खुश होना चाहिए, भगवान का विधान मान करके जो भी कुछ हो रहा है भगवान के हुक्म से हो रहा है, तो भगवान का विद्यावा पुरस्कार मान करके खुश होना चाहिए। तो अनिच्छा परिच्छा स्वेच्छा ये तीन इच्छा के भेद करें, जाति के भेद, इच्छा की जाति के तीन भेद। अनिच्छा तो क्या कि बिना किसी की इच्छा के अपने आप ही कोई चीज मिल जावे, अनिच्छा से मिली ना, उसमें हमारा हाथ नहीं, भगवान का हाथ। और परिच्छा से कोई भाई का लड़का नहीं है, अरे एक जवान लड़के को लेकर उसको कृष्णा पुत्र बना लिया, यानी उसको हमारी भाषा में गोद ले लिया, वो उसका लड़का बन गया। तो आप थोड़ा ध्यान देकर के देखो कि पहले तो वो लड़का था ही नहीं, और अब ऐसा बन गया तो मालिक होगा ना घर का, तो उस लड़के ने क्या परिश्रम किया, उसको तो अनिच्छा वो लाभ हो गया, पूर्व के पुण्यों के प्रभाव से थी, समझो कि उनको परीक्षा से दाता की इच्छा से थी और सारी संपत्ति मिली। तो अनिच्छा परीक्षा से पाप का भी भोग होता है, पुण्य का भी भोग होता है। जैसे हम कोई गड्ढा खोद रहे हैं और वहां धनराशि निकलाई, तो ये एक प्रकार से हम गड्ढा खोदया कोई धन के लिए नहीं, अपनी खुशी से कोई गाछ लगाने के लिए, किंतु उसके बीच के फसल धन नहीं गया, अनिच्छा ही किसी की इच्छा नहीं। तो ये पुण्य का फल है। जैसे हम यहां बैठे भूकंप होकर के मकान गिर जाए और दबकर मर जाओ, रेल चलती है क्षणिक के बीच के वहां समझो रेल उठ जाए और हम उसके नीचे मर जाओ, तो वो दुख है ना, वो पाप का फल है। तभी हमने पाप किए थे उसका फल हुआ। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख, ये अनिच्छा से परिच्छा से भी इनका भुगतान होता रहता है। तो उत्तम बात, उत्तम पक्ष यह है कि जो भी कुछ अनिच्छा से परिच्छा से हुए उसको भगवान का विधान समझ लेना चाहिए, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझना चाहिए। तो प्रत्यक्ष में आपको आनंद हो सकता है और प्रत्यक्ष में आपको शांति मिल सकती है। तो ये बड़ी दानी चीज है। तो इस प्रकार से थी अनिच्छा परिच्छा से सुख और दुख होती है। तो परिच्छा से दुख भी होता है। किसी ने समझा कि इसके पास 10,000 रुपया है तो रात में आकर के और वो जान से मार डालता है, तो वो हमारी मृत्यु जो हुई उसका निमित्त जो है परीक्षा हुआ, किंतु वास्तव के भीतर के बात तो हमारी मृत्यु ही थी, इस प्रकार से नहीं थी। भगवान के घर के वहां इंतजाम रहता ही है, इसको इसके विषय में हमारे को क्या पड़ी। तो ये समझना चाहिए कि अनिच्छा और परीक्षा से जो कार्रवाई होती है सुख या दुख मिलता है, इसके बीच में हमारी सर्वथा प्रतंत्रता है। सर्वथा प्रतंत्रता है कि हमारे कुछ भी आज की बात नहीं, परीक्षा से धन मिलना या अनिच्छा से धन मिलना, इसी प्रकार से थी। इस प्रकार से जो आपने ये पुण्य का फल है और परीक्षा से अनिच्छा से दुख प्राप्त होना ये एक प्रकार से पाप का फल है। कोई भी दुनिया में दुख भोगना नहीं चाहता, किंतु बलात्कार से दुख भोगना पड़ता है। और सब सुख चाहते हैं, किंतु निरंतर सुख की प्राप्ति देखने में नहीं आती। महात्माओं में होती है, क्योंकि सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। संत के तो संतों की सदा दिवाली है, हर वक्त आनंद के वह मगन है, आठों पैर आनंद के वह मगन है, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि जो कुछ वस्तु आप देख रहे हो, पदार्थ मात्र को भगवान का स्वरूप समझे, पदार्थ मात्र को, सभी साकार निराकार कर अकर स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं और जितना जो जड़ है संसार है, सबको परमात्मा का स्वरूप समझ लेवे। जैसे भगवान ने गीता में बताया, यदा भूत प्रत्यक्ष भाव है मेक सर्व पश्यति और तथेव से विस्तार ब्रह्म संग पद्धति तथा अध्याय 13 श्लोक 30 में भगवान क्या कहते हैं। ये जो पृथक पृथक जो भाव है, इन सब पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में, एक ब्रह्म से देखे और उस ब्रह्म से सारे संसार का विस्तार समझे, तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और बहुनाम जन्मनाम अंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ वासुदेव ही है, साक्षात भगवान को स्वरूप ही है। इस प्रकार से भगवान कहता है कि मुझको जो भजता है या मेरे स्वरूप का अनुभव करता है वह अति से महात्मा है, दुर्लभ महात्मा, उच्च कोटि का महात्मा पुरुष। ऐसी स्थिति बताई तो सिर्फ महात्मा के मात्र वो बात स्वाभाविक है और साधक के लिए वो साधन। महात्मा पुरुष की जो स्थिति है उसको लक्ष्य बना करके हम चले तो हम भी शीघ्र महात्मा हो सकते हैं। हमारे दिल में ये इस भाव की जागृति होनी चाहिए कि हम महात्मा कैसे बने, हम भक्त कैसे बने, इसके लिए हम क्या करें, आतुर हो जाना चाहिए। तो स्वयं भगवान समझो कि खूब मदद करेंगे हमारे। तो ये सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा का स्वरूप है। तो फिर इनसे होने वाली जो चेष्टा वो क्या है कि वो फिर समझो कि भगवान वासुदेव की लीला है, उसको चरित्र कह दो, लीला कह दो, भगवान वासुदेव का चरित्र है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि वस्तु मात्र को, पदार्थ मात्र को तो भगवान का स्वरूप समझना चाहिए और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझनी चाहिए। चाहे समझो कि अनिच्छा से या परीक्षा से या स्वेच्छा से, स्वेच्छा से कैसे कि अपने दिल में इच्छा हुई कि अमुक अनाज खरीद लो उसमें लाभ होगा और खरीद लिया लाभ हो गया, कहीं घटी भी पड़ेगी घाटा भी पड़ जाता है। तो कर्म करने में तो जीव स्वतंत्र बहुत अंश के वहां और भोगने के बीच के वहां बिल्कुल प्रतंत्र है। तो ऐसी बात मन के वहां विचार कर करके, पर ऐसी बात विचार करके ये समझना चाहिए कि हाँ मेरे द्वारा भी कोई चेष्टा होती है तो स्वयं भगवान ही करवा रहे। तो अपने से होने वाली क्रिया में यो भाव रखे कि मैं जब अपने आप को भगवान के समर्पण कर चुका, समझो कि अपना आत्म समर्पण कर चुका, तो फिर यह चीज तो भगवान की हो गई। तो इसलिए इसके द्वारा भी जो कुछ होता है सब भगवान के संचालक से होता है। तो इसका संचालक भगवान है। हमारे इंद्रिय जो है, मन बुद्धि है, शरीर है, इस सब का संचालक भगवान है। जब भगवान संचालक हो जाएंगे तो हमारी कोई भी क्रिया के वहां रत्ती भी फर्क नहीं आवेगा, सारी हमारी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जाएगी। हमारी सारी क्रिया कल्याण के करने वाली हो जाए। तो इस प्रकार का ये उस कोटि का जो भाव है उसको हर वक्त याद रखना चाहिए। और फिर देखो थोड़े ही समय के बीच के वहां आपकी अवस्था बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और आपका स्वभाव बदल जाएगा। हर वक्त आपको शांति और आनंद प्रतीत होगा, मानो शांति और आनंद के समुद्र में ही हम लोग सब डूब गए ऐसा प्रतीत होगा। क्योंकि परमात्मा विज्ञान धन है और उसके बीच के वहां सब संसार मगन है। तो यही देखेंगे कि हाँ वस्तु मात्र जो है भगवान का स्वरूप है, और सबसे जो चेष्टा हो रही है यह एक प्रकार से भगवान की लीला है। वो लीला भगवान चाहे हमारे से करवावे और चाहे दुनिया से करवाए है तो भगवान की लीला। इस बात का दृढ़ हम विश्वास करें कि भगवान के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है, केवल एक भगवान ही है। और जो चेष्टा होती है वो समझो सब भगवान की लीला। प्राणी मात्र को, वस्तु मात्र को भगवान का स्वरूप, और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला। देख देख करके हम हंसते रहे कि वाह देखो कैसा वाइस कोप हो रहा है, कैसा एक आप थिएटर हो रहा है, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं। इस प्रकार का भाव हम रखें तो थोड़े समय के मां हम जीते हुए मुक्त हो सकते हैं। जिनको हम जीवन मुक्त कहते हैं वो स्थिति हमारी थोड़े समय के मां हो सकती है। आप कर करके देख लो इसमें को कोड़ी लगे चराम, और हम अपना जीवन इस देह के पोषण के वास्ते लगावे तो भी मूर्खता है। क्योंकि इस देह की तो खाक होने वाली है शीघ्र ही, तो इसके लिए जितना हमारा समय लगाया जाएगा वो सब बर्बाद होगा एक प्रकार से। तो शरीर को पोषने के लिए समय नहीं लगाना चाहिए। शरीर में दशर मन अधिक हो गया तो क्या तुम्हारे को उठा करके ले जाओगे, वे तुम्हारे जीव को रस्ते में रोएंगे कि लाश बहुत भारी है, यही तो होगा ना, और क्या होगा। आखिर में तो इसकी खाक होनी है, तो जब तक इस शरीर की खाक न हो जावे, ये मट्टी में नहीं मिल जाए उसके पहले पहले से जो कुछ लाभ उठाना वो शीघ्र उठा लो, जो आगे जाकर के आपको घोर पश्चाताप करना नहीं पड़े। सब ऋषि महात्मा लोग चेतावनी दे रहे हैं, भगवान चेताते हैं, सब कोई चेताते हैं, फिर भी हम नहीं चेतते। समझो कबीर दास जी कहते हैं कबीरा नो बते आपनी दिन दस ले वो बजार, ये पूरा पटन ये गली बहुरी न देखो आए, के सब कुकिए न कुकिए असार, रात दिवस के कुकते कब हूँ तो सुने पुकार सिया, हाड जले जो लाकड़ी के सजले जो घास, सब जग जलता देख के भये कबीर उदास, मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाय बसाओगे छाड़ बसंता ग्राम, आज काल की पांच दिन जंगल होएगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घासतिया राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण मैं हूँ तो दीन दयाल के बन के पड़ेगी कान काल वजंता आज वज आज वजंता ऐब पर मैं प्रलय हो यगी बहुई बजोगा कब सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो संत मिलन और हरि भगति दुर्लभ जग में दो आए थे तछु लाभ को खोए चले सब मूल फिर जाओगे सेठ पास पले पड़ेगी धूल दो बापन को भूल मती जो चाहत कल्याण नारायण एक मोत को दूजे श्री भगवान नारायण 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 श्री वल नारायण नारायण श्री वल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्ण आनंद पारानंद शांतानंद घनानंद नचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आहा एक आनंद के स्वर दूसरी वस्तु है ही नहीं आहा शांति शांति शांति।
चेतावनी विषयक ये व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी तदनुसार तारीख 24/5/55 को गीता भवन में शाम को 5 बजे करीब दिया गया।